राजमहल। अरुणिमा इस समय आस्तिक के कमरे में थी। इस पूरे कमरे को कीर्ति ने सजाया था। पूरे कमरे की थीम डार्क मेहरून और रेड में थी, लेकिन यहाँ पर कुछ डरावनी पेंटिंग्स और जानवरों के स्टैचू भी रखे हुए थे, जो इस कमरे को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। किंग साइज बेड को गुलाब के और जैस्मिन के फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अरुणिमा इस समय बेड के एक कोने पर बैठी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठकर पूरे कमरे में टहल ले। जब से आस्तिक उसे महल लेकर आया था और गृह प्रवेश के बाद प्रणाली उसे आस्तिक के कमरे में लाई थी, तब से कोई भी उससे मिलने नहीं आया था और ना ही किसी ने उससे बात की थी। अरुणिमा को याद आया कि जब आस्तिक और वो महल के दरवाजे पर आए थे तो गृह प्रवेश की तैयारी में सब शामिल थे। अरुणिमा के गृह प्रवेश की रस्म प्रणाली ने की थी। पृथ्वी उस समय वहीं मौजूद था, लेकिन जैसे ही अरुणिमा महल के अंदर प्रवेश करती है, पृथ्वी वहां से चला जाता है। आस्तिक अपने गले में पड़ी हुई वरमाला और मोतियों की माला को निकालते हुए कीर्ति को देता है और कहता है, अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ और जब तक मैं नहीं आता तब तक किसी को कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। कीर्ति ने हाँ में सिर हिलाया और अरुणिमा को लेकर आस्तिक के कमरे की तरफ चली गई। प्रणाली ने सारे नौकरों और सारे सेवकों को शादी का उपहार देकर भेज दिया था और उस समय महल में सिर्फ गिने चुने नौकर ही थे। काफी देर से अरुणिमा कमरे में ऐसे ही एक कोने पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घूंघट अभी भी था। अरुणिमा अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। इतनी तेज दरवाजा खुलने से अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। घूंघट से अंदर से अरुणिमा आस्तिक को देख पा रही थी। आस्तिक ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से चलता हुआ अरुणिमा के सामने आ जाता है। आस्तिक अरुणिमा के सामने खड़ा था और अरुणिमा ने अपने लहंगे को जोर से पकड़ रखा था। वो घूंघट के अंदर से आस्तिक की डरावनी आंखों को देख पा रही थी। आस्तिक को अरुणिमा का पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके वे गुलाबी होंठ आस्तिक के सामने थे, जिसे देखकर आस्तिक ने अपने हाथों की मुठियां कस ली थीं। आस्तिक उन गुलाबी होंठों को देखता हुआ अपने मन में कहता है, झूठ, सब झूठ है। तुम भी अपनी माँ की तरह झूठी हो। इस चेहरे की मासूमियत के पीछे छुपकर तुम भी अपना मतलब ही निकालती हो। मैं अब तुम्हारे छलावे में नहीं आऊंगा। तुम्हारी कोई चाल अब मुझे नहीं छल सकती है। आस्तिक की नजरें अरुणिमा के चेहरे पर घूम रही थीं, जिसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आस्तिक ने अपनी नजरें अरुणिमा के गले से होते हुए उसके सीने पर डाली, जहां पर अरुणिमा ने अपने हाथों को रखा हुआ था। उसके खूबसूरत हाथ, जिसमें इस समय शादी का चूड़ा था और खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगी हुई थी। आस्तिक अपने एक हाथ से अरुणिमा का हाथ पकड़ता है। अरुणिमा डर से कांप जाती है और आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक अरुणिमा के हाथों को पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथों से उसकी चूड़ियों को छेड़ते हुए कहता है, क्या मैं पहला आदमी हूँ जो तुम्हें छू रहा है? अरुणिमा इतनी डरी हुई थी कि उसकी आवाज़ भी उसके गले में अटकी हुई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अरुणिमा को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्तिक ने अरुणिमा की चूड़ियों भरी कलाई को अपने हाथ में दबोच रखा था। वे कांच की चूड़ियाँ टूट कर अरुणिमा की कलाई में चुभने लगती हैं और वहां से खून निकलने लगता है। अरुणिमा दर्द से कराहने लगती है। आस्तिक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जवाब दो मुझे। अरुणिमा रोते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाती है और जी कहती है, पर तभी आस्तिक एक जोरदार तमाचा अरुणिमा के गाल पर मारता है। अरुणिमा के होठों के किनारे से खून निकलने लगा था और वो सीधे जाकर उस किंग साइज बेड पर गिरती है। अरुणिमा अपने गालों पर हाथ रखते हुए डरे हुए चेहरे के साथ राजा साहब को देखती है। आस्तिक अपना एक पैर बेड पर रखकर अरुणिमा के ऊपर झुकता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसता हुआ कहता है, झूठ, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। झूठ बोल रही हो कि मैं पहला इंसान हूं जो तुम्हारे करीब आया है। अरुणिमा ने रोते हुए अपना चेहरा ना में हिलाया और कहा, नहीं राजा साहब, मैं झूठ नहीं कह रही हूं, मेरा यकीन कीजिए। आस्तिक अपना फोन निकालता है और गैलरी ओपन करके अरुणिमा के सामने करते हुए कहता है, अगर तुम सच कह रही हो तो इन सबको झूठा कैसे साबित करोगी? अरुणिमा फोन में उस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इस तस्वीर में अरुणिमा विशाल के गले लगी हुई थी और उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। अरुणिमा ने आस्तिक को देखकर कहा, ये सब झूठ है, ये तस्वीर सच नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, मैंने कभी विशाल को अपने करीब नहीं आने दिया है। मुझे नहीं पता इस तस्वीर में मैं कैसे आई, लेकिन ये तस्वीर मेरी नहीं है। आस्तिक ने अरुणिमा के बालों को झटके से छोड़ दिया, जिससे अरुणिमा का चेहरा दोबारा से बैठ के गत्ते में जा लगा। आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, मुझे लगा तुम थोड़ी अलग होगी, तुम अपनी माँ की तरह नहीं बनोगी, लेकिन तुमने पहली बार में ही मुझे गलत साबित कर दिया है। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर राजा साहब को देखकर कहती है, राजा साहब, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, पर आप मेरी माँ का नाम नहीं ले सकते हैं, उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बार था जब आस्तिक ने अरुणिमा की थोड़ी सी ऊंची आवाज़ सुनी थी और उसका जो रहा सब्र था वो भी टूट गया। उसने अरुणिमा के बालों को जोर से अपनी मुट्ठियों में कस लिया, जिससे अरुणिमा की एक दर्दनाक चीख निकलती है। आस्तिक अरुणिमा को गुस्से में घूरता हुआ देखता है और कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे सामने अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत रखते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों के मुंह बंद करवा देता हूँ। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। अगर आस्तिक उससे इतनी ही नफरत करता है तो फिर क्यों उसने अरुणिमा से शादी की है? अरुणिमा कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही आस्तिक अरुणिमा को कंधे से धकेल कर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है, लेकिन आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे थे। वो अरुणिमा के चेहरे को घूरता है और फिर उसके गले को देखते हुए कहता है, रानी साहिबा, गलत बात है। आज शादी हुई है, हमारी सुहागरात है और आज ही की रात हम दोनों एक दूसरे से उलझ रहे हैं। वैसे उलझना तो हमें चाहिए ही, लेकिन बातों से नहीं बल्कि बॉडी से। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और आस्तिक अपने एक हाथ से अरुणिमा के गालों को छूने लगा।